ஓம் சாந்தி. குட் மார்னிங். பிராமண் ஜீவன், குஷ் நசீப் ஜீவன். ये कौन सी सभा बैठी हुई है? कौन सी सभा है? खुश नसीबों की सभा, ऐसे कहेंगे ना? वैसे तो खुश नसीब यहां पर कितने आए थे? बहुत ढेर देख रहे थे अब बाप दादा मिलन में 20,000 के लगभग होंगे, परंतु उनमें से भी आप विशेष खुश नसीब हैं। क्यों? मैं अक्सर करके खुश नसीब सबसे अधिक उनको कहता हूं कि जो मधुबन में आके एक भी क्लास जिन्होंने मिस नहीं की, हाँ घूमना फिरना बाद में, लेकिन क्लास एक भी मिस नहीं की, वो हैं बहुत 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 खुश नसीब। तो आप लास्ट डे में भी क्लास में आए हैं, आप में से कौन है जिन्होंने पूरा जब से आए हैं एक भी क्लास मिस नहीं की, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा है, काफी खुश नसीब ना। तो इसलिए हमें जब भी आए ये लक्ष्य रखना चाहिए कि क्लास एक भी मिस नहीं करेंगे, तो उससे हमें बहुत कुछ प्राप्तियां होती हैं। स्टूडेंट बन के आए ना, गॉडली स्टूडेंट, तो उसमें स्टूडेंट बन के हम अच्छी तरह से पूरी प्राप्तियां करें। तो दूसरा, ब्राह्मण जीवन में कौन कौन सी हमें खुश नसीबी प्राप्त हुई है, पहले तो ये चिंतन करने की जरूरत है। फिर है कि खुश नसीब बने कैसे, उसके हम आपको आज कुछ टिप्स बताएंगे, कैसे सदा खुशियों में झूमते रहें, क्या उसका तरीका है। लेकिन सबसे पहले, ब्राह्मण जीवन खुश नसीब जीवन है, किस कारण? किस कारण? आप देखो कितनी बड़ी बात है। मतलब एक बार हम शिमला से आ रहे थे, दो सेठ हमारे साथ थे, एक ने कहा, इंट्रोडक्शन आपस में होने लगा, एक ने कहा मेरा एक बंगला शिमला में है, दूसरा बंगला मेरा चंडीगढ़ है, तीसरा दिल्ली है, चौथा बॉम्बे है। दूसरे सेठ ने कहा मेरा एक बंगला कुल्लू मनाली में है, दूसरा मेरा जयपुर में है, तीसरा आगरा में है और चौथा कलकत्ता में है। जब मेरा परिचय पूछने लगे तो मैंने उन्हें कहा, जी मेरे 5,000 बंगले हैं। 5,000 बंगले? हैरान हो गए, एकदम शॉकिंग उन्हें लगा। फिर मैंने सोचा कहां से शुरू हूं, मैं कहा एक बंगला तो अमेरिका में है 200 एकड़ में पीस विलेज, एक बंगला ऑक्सफोर्ड में है 60 एकड़, ऑक्सफोर्ड दुनिया का सबसे महंगा शहर, और एक बंगला फिर सिडनी में है 125 एकड़, फिर माउंट आबू की ओर आए वहां भी 100-200 एकड़ में बने हुए हैं, फिर गुड़गांव की ओर आए, कहते जी आप कौन से रेडियो स्टेशन से बोल रहे हैं? मैंने कहा जिस संस्था से मैं बिलोंग करता हूं वो संस्था नहीं है, वो एक परिवार है, फैमिली है। तो जितने हमारे सेंटर्स हैं वो हमारे बाबा के घर सो हमारे घर है, इसलिए 5,000 सेंटर हैं हमारे, तो हमारे 5,000 बंगले। वो कहने लगे बिल्कुल सही बात है। मैं कहा जहां जाओ बड़े प्रेम से कहते हैं आओ भाई जी, आओ बहन जी, नहीं तो कितना बड़ा भाग्य है। 5,000 हमें तो अपने घर देखने के फुर्सत भी नहीं है, इतने घर हैं, नहीं है ना भाग्यशाली आप सब, मेरे ही हैं या आप सबके भी हैं? आप सबके भी है ना, तो अपने भाग्य के लिए खूब बधाई हो, उस नशे में रहो। फिर ये कितनी बड़ी खुशनसीबी। दूसरी खुशनसीबी, कई लोग कितना गर्व से कहते हैं मेरे पीछे 50 रिश्तेदार हैं, तो पता है मेरे पीछे 50 और हमारे पीछे कितने हैं? 10,00,000 भाई बहनों का परिवार किसी का होगा बताओ, और वो भी डिवाइन फैमिली, कितना बड़ा भाग्य है। हाँ, जो आपको लगे सचमुच ये बहुत बड़ा भाग्य है आप तालियां बजाते रहना। क्योंकि ये कितना बड़ा भाग्य है, सोचो तो सही, इस पे सोचेंगे तो इतना खुशी चढ़ जाएगी कि कमाल है, कितनी बड़ी हमारी फैमिली, हर देश में हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, हर वहां पर बैठे हुए हैं, देखो कमाल है, हर खंड में हर भाषा वाले सबसे हमारा रिश्ता है। और बाबा कहते ब्लड कनेक्शन से रूहानी कनेक्शन ज्यादा पावरफुल है, तो हमारा रूहानी बल्कि ये नाता है, कितना बड़ा नाता है। आज बड़े बड़े लोग कई बार कई मिनिस्टर्स का टूर होता है ना, कहीं जाते हैं किसी देश में, हाँ जाना चाहते हैं जाते हैं। एक बार सचमुच एक मिनिस्टर मेरे पास आए, कहते मैं वहां जा रहा हूं उस कंट्री में, आपके तो सेंटर होंगे। मैं कहे कहते मेरे को वहां कुछ चिट्ठी दे सकते हो, मैं चलो आपके घर में वहां भी हुआ देख आऊंगा। मैंने कहा जरूर। तो मतलब देखिए, उनको पता है इनकी रिश्तेदारी सारे विश्व में, हम तो एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहीं रहते हैं, वहीं चक्कर काटते रहते हैं, और ये तो सारे विश्व के हैं और विश्व इनका है, कितनी बड़ी बात है देखो। तो हमारा एक बहुत बड़ा भाग्य है। इसी तरीके फिर और खुश नसीबी क्या है, कितना बड़ा ही खुश नसीबी है कि स्वयं भगवान रोजाना हमें पढ़ाने आता है। हाँ, ये गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं हम। हाँ, कितनी, बाबा कहते हैं उस यूनिवर्सिटी में तो फिर भी थोड़े से होते हैं कोई, किसी किसी, वो भी किसी किसी यूनिवर्सिटी में फॉरेनर, और हमारा तो सारा विश्व इसका स्टूडेंट है। एक ही डेट की मुरली सुनते हैं, एक ही दिन सुनते हैं। हाँ देखो, हम सब कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी के हम गॉडली स्टूडेंट हैं, और स्वयं भगवान इतना दूर से पढ़ाने के लिए आते हैं, तो ये हमारी खुश नसीबी नहीं तो और क्या है ना खुश नसीबी। कितना सुंदर सुबह सुबह बाबा मुरली सुनाते हैं। आज की मुरली से जो कोई 10 पॉइंट सुना सकता है हाथ खड़ा करो। अब गॉडली स्टूडेंट में नंबर, वेरी गुड, एक आत्मा को याद है, गुड। देखो गॉडली स्टूडेंट में नंबर वार, कुछ एक को जरूर याद होंगे दो चार को, कुछ एक भूल जाते हैं, लेकिन ट्राई करो जो भी हम बाबा की मुरली सुने उसको फिर हमें बुद्धि में हमें याद रहनी चाहिए। उससे फिर क्या होगा, हम एक सचमुच कहलाने वाले बनेंगे, नंबर वन गॉडली स्टूडेंट। स्टूडेंट में वैसे भी नंबर वार होते हैं ना, तो हमें तो नंबर वन बनना है ना, तो उसका तरीका यही है। तो हम चेक करें बाबा की मुरली के महावाक्य सदैव याद रहते हैं, आज बाबा ने कितनी अच्छी बातें बताई, आज बाबा के बड़ा अच्छा एक टाइटल आया था। क्या टाइटल आया था? हाँ, बाबा ने कहा भगवान बाबा है भक्तों का भगवान, बच्चों का बाबा, भक्तों का भगवान, भक्तों का रक्षक। बाबा ने कहा बच्चों का भी रक्षक है तो भक्तों का भी रक्षक। और दूसरा बाबा ने कहा मैं कौन हूं, जादूगर। हाँ, तुम सब भी कौन हो, जादूगर जादूगरनिया। क्या जादू करते हैं, मनुष्य से देवता बना। ये बाबा का जादू देखो कमाल है। देखो आज ईंटों पत्थरों की सारी दुनिया है, और ऐसा जादू करेगा कुछ दिन के बाद यहाँ सोने हीरों के महल आ जाएंगे, इससे बड़ा क्या जादू हो बताओ। तब बाबा कहते मैं छोटा मोटा नहीं, मैं तो बहुत बड़ा जादू करता हूँ, है ना। तो फिर बाबा ने आज मुरली में हाँ विशेष क्या करता हूँ ये भी बताया। हाँ, तुम बच्चे काम चिता पर जल भस्म हो गए, और मैं आके क्या करता हूँ, ज्ञान की बरसात बरसाता हूँ, है ना। तो ज्ञान की बरसात हमारे ऊपर सदा बरसती रहे दिन भर, और उसका बेस्ट तरीका है मुरली की पॉइंट सुना, आप बुद्धि में रखा करो, तो फिर आप देखो सारा दिन जैसे ज्ञान बरसात बरसती जा रही है, तो उसको फिर हर घंटे में कोशिश करो, रिवाइज करो, बहुत आनंद आएगा, योग भी बड़ा अच्छा लगेगा बाबा से। तो बाबा ने कहा ज्ञान की बरसात बरसाता हूं। हाँ, कितना अच्छा लगा बाबा की बात। और बाबा ने कहा आज श्रीमत पर भी कहा, क्या कहा, मैं श्रीमत पर, तुम बच्चे श्रीमत पर क्या करते हो, हाँ डेटी सोरेंटी स्थापन करते हो, देवी साम्राज्य स्थापन कर रहे हो, मैं तुम्हें श्रीमत देता हूं, अब तुम जज करो क्या रॉन्ग क्या है राइट क्या है। एक बार बाबा ने कहा था बच्चे बुद्धि विवेक कई बार कहता है कि नहीं ये बाबा की श्रीमत नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, परंतु कई बच्चे विवेक का भी खून कर देते हैं। ओहो, कितना बाबा ने शब्द दिया, और पर फिर परवाह नहीं कर, पता भी है, बुद्धि कह भी रही है ये बाबा की श्रीमत नहीं है, उसके बावजूद भी संस्कारों के वश हो जाते हैं तो, और विवेक का खून कर देते हैं। तो श्रीमत जहां आ जाए वहां कांप जाना चाहिए, नहीं भगवान की श्रीमत की उल्लंघना नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए उसकी उल्लंघना नहीं करनी। तो बाबा ने ये कितना बड़ा हमें भाग्य मिला हुआ है, कदम कदम पे श्रीमत मिली हुई है, हजारों श्रीमत पर, आप हर कदम पे सोच के देखना बाबा ने कुछ ना कुछ श्रीमत दी, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे चलना, कैसे मुरली सुनना, कैसे क्लास सुनना, आपके लिए भी श्रीमत है, मेरे लिए भी श्रीमत है। मेरे लिए श्रीमत क्या है? मेरे लिए श्रीमत है कि सदैव समझो क्या करण करावन हार बाप करा रहा है ना, ये जो भी है हम तो सब निमित्त हैं, सब कुछ करके खुद को छिपाया, आपे सब कुछ खेल रचाया, सब कुछ करके खुद को छिपाया, तो करता तो बाबा ही है लेकिन बच्चों का नाम कर देता है। मुझे ये समझना है बाबा ही करा रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूं, आप सब भी सुन रहे हैं, है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे ना बच्चे, मैं भी सुनता हूं बाजू में, आप सबके लिए भी श्रीमत है, ये पक्का सोच के चलें कि बाबा ही आज कुछ विशेष पॉइंट मुझको टच करनी है जो बाबा सुना रहे हैं। किसी के भी थ्रू, चाहे सुबह मुरली कोई भी सुनाए तो समझो बाबा उसके थ्रू सुना रहा है। तो ये सारा दिन आप सोचना, पल पल की बाबा ने श्रीमत दी हुई, हर पल कैसे करना है, कौन सा कर्म, श्रीमत दी है, लेकिन हम कई बार उन श्रीमत को भूल जाते हैं। ठीक है, तो एक ये भी हम सदैव याद रखें। इस तरह आप देखेंगे कि ये बाबा के विशेष जो हमें जो भी हमें वरदान जो भी वो मिलते हैं उससे मुरली से पॉइंट मिलती हैं, उनको बुद्धि में चिंतन करते रहना है। तो चिंतन करते करते कितनी खुशी में हम भर जाएंगे, खुश नसीब, सबसे बड़ा खुश नसीब वो भी खुश नसीब है रोज मुरली सुनते हैं, उससे अधिक खुश नसीब वो है जो मुरली मंथन करते हैं, और उससे अधिक खुश नसीब वो है हाँ जो उसको धारण करते हैं। आज बाबा ने खुश नसीब बनने पे भी एक पॉइंट सुनाया, क्या था हाँ लास्ट स्लोगन क्या था? खुश, सदा खुश रहना और खुशी बांटना, ये आत्मा की सबसे बड़ी शान है ना, है ना शान, आत्मा कितनी महान बन जाती है उससे। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ऐसे ही बाबा ने आज वरदान में क्या कहा हाँ, डबल लाइट स्थिति के द्वारा हम विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव, ये मतलब याद रहने चाहिए, और केवल याद ही नहीं, दिन में प्रयोग करते रहें, डबल लाइट स्थिति हर वक्त हमारी बनी रहे। तो बाबा ने जो भी हमें बाबा बताते हैं उन सब बातों को, आज पवित्रता की कितनी अच्छी बात बाबा ने सुनाई ना, कि बच्चे कुमारियां वो देखो कितना उनका मान होता है, पूजा करते हैं, आज भी कलयुग के एंड में भी रस्म बनी हुई है, देखो पवित्रता का कितना मान है। हाँ, इस सभा में जो कुमारियां बैठी हैं, जरा खड़े हो जाओ, कोई बैठी है कुमारियां, बैठी है ना, देखो कितनी सारी बैठी हैं, वाह, इनके लिए ताली बजाओ गुड, आगे आगे सोफा खाली है, आप सब आगे आ जाओ। बाबा ने आज कहा ना कुमारियों का मान सबसे फ्रंट में आके, हमारी दादी चंद्रमणि थी ना, हमेशा ही अमृतसर कहीं भी पंजाब क्लास लेती थी ना, कुमारियों को क्लास में सबसे आगे बिठाते थे, क्योंकि कुमारियां हैं, टीचर भी कुमारियां हैं, तो पवित्र है ना बहुत ही, बाबा कितना इनका सम्मान करता है। आज भी बाबा ने कहा, बाबा कुमारियों के द्वारा बच्चे बड़े बड़े भीष्म पितामहों को बाण मारे, है ना, तो किस तरीके बड़े बड़े कुंभकर्ण जाग उठते हैं। आज बाबा ने कहा आगे चल के देखना बच्चे, बड़े बड़े साधु हाँ उनको भी, उनका भी उद्धार तुम्हारे द्वारा होगा। तो बाबा की जो भी हमें पॉइंट्स मिलती हैं उनको हम कोशिश करें बुद्धि में अच्छी तरह से धारण करके हाँ, तो और फिर औरों को भी कराएं। तो मुरली के पॉइंट्स बुद्धि में, बाबा कहते हैं एक एक वर्षन कितने का है? 1,00,000 रुपए। तो सुबह सुबह ही नशा चढ़ जाए, हम सुबह रोज मुरली सुन के फिर मुरली मंथन करते तो 15 पॉइंट जरूर याद रहती है, आज भी याद है, सो रोज याद रहती है। ये नहीं कि पेज पढ़ के नहीं, वैसे ही याद रहती है। हम सुबह ही अच्छी तरह से, फिर उसके बाद जो वॉकिंग करते हैं तो उसमें बड़ा नशा होता है कि बाकियों को तो अभी दुकानें खुली ही नहीं है, हमारे अकाउंट में तो 15,00,000 रुपए भी आ गए। नशा चढ़ता है ना। ज्ञान रत्नों से भरपूर रहना असली तो ये कमाई है ना, इससे सदा बुद्धि में टप 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 टपक टपक ज्ञान टपकता रहना चाहिए हर वक्त, ठीक है ना। फिर बाबा ने आज जो खुश नसीब की पॉइंट चल रही थी कि हम कितने खुश नसीब हैं, ये ब्राह्मण जीवन जो हमें ब्रह्मा भोज मिलता, बाबा कहते देवी देवता भी तरसते हैं इस ब्रह्मा भोज के लिए, तो हम भी तो कितने भाग्यशाली हैं। अच्छा, फिर तीर्थ स्थान हमारे कौन से हैं? ये सेंटर्स है ना, लेकिन एक फिर सर्वोत्तम तीर्थ स्थान वो कौन सा है? वो मधुबन, शांतिवन, ये सब ज्ञान सरोवर, ये सब सर्वोत्तम तीर्थ स्थान। तो हमें इस महत्व से जो पूरे जितने भी दिन रहो, एक सप्ताह रहो, मैं सारी दुनिया में से सबसे बड़े तीर्थ स्थान पे यहां पर एक एक सेकंड व्यतीत कर रहा हूं, सफल कर रहा हूं, कितना बड़ा मेरा भाग्य, इस तीर्थ स्थान पे पहुंचते ही भाग्यवान है। जिसके भाग्य में नहीं होगा ना, आके भी चला जाएगा। एक कोई वीआईपी आया था पंजाब से, मैं शहर का नाम तो नहीं लेता, उस शहर से आया और आके ट्रेन से उतरा, तो बसेस में आगे पीछे होता है ना, तो भर गई होगी, उन्होंने कहा दूसरी पे जाना, उसे उतारा। तो उसको बड़ी फीलिंग आ गई, इसी बात की इतनी फीलिंग आ गई कि दूसरी गाड़ी ट्रेन पकड़ के वापस चला गया। तो मैं उस शहर में गया, बहनों ने मिलाया, कहते देखो इस आत्मा की तकदीर, हम इसको इतनी मेहनत करके लेके गए, इसको फीलिंग आई तो वापस आ गया। कहते रहे कोई बात नहीं, रश है, दूसरी बस आए, लेकिन उसको ये हुआ कि ले। तो मतलब बाबा कहते कि बच्चे भाग्य आप कितना भी दो, भाग्य मिलता मिलता भी वंचित हो जाएगा। और कोई कोई हमेशा जब कॉन्फ्रेंसेज होती हैं पूछते हैं, हम अब की बार भी हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर की कॉन्फ्रेंस में 5,000 लोग आए थे, तो हमने पूछा कि वो लोग हाथ खड़ा करें जिनका कोई प्रोग्राम ही नहीं था, बस एक दिन पहले ही उनको प्रोग्राम मिला, किसी का टिकट कैंसिल हुआ, दीदी ने कहा तुम चलेगा, और फटाफट उन्होंने 2 दिन पहले ही, तो ऊपर बात की इंजीनियर विंग में यहाँ के निमित्त से, और उन्होंने कहा भले ले आओ। तो वो मेरा तो 2 दिन पहले ही बस प्रोग्राम में लास्ट मोमेंट पे ही बना और मैं आ गया, जिनका था वो रह गए और जिनका नहीं था वो आ गए। तो क्या कहेंगे कि किसका भाग्य था? जिसका भाग्य था ना कर्मों की पूंजी, उसको बाबा ने भाग्य देना ही था। खैर, हम ये नहीं कहते कि भाई हम ऐसे ही आ जाएं बगैर पूछे कि मेरा तो भाग्य नहीं, लेकिन पूछ के, वो भी जो आए थे पूछ के आए थे, लेकिन बहुत ही देखो किस्मत की बात है ना, किसी को तो कैसे श्रेष्ठ भाग्य, यहां पहुंचते ही भाग्यवान है। ब्राह्मणों में भी देखो कई बेचारे रह जाते हैं चाहते हुए, उन कईयों को शरीर प्रॉब्लम करता है, नहीं आ पाते हैं, क्या करें। तो इस तरीके कितने बड़े आप भाग्यवान हो, कितनी खुश नसीबी है, इसलिए अपने भाग्य के लिए जितनी तालियां बजाओ उतनी कम। अब हैं, हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं कैसे सदा खुश नसीब बने, खुश खुशियों में झूमते रहें। खुशियों में झूमना ही खुश नसीब बनना है, सदा खुश रहने के क्या तरीके। अच्छा, आप में से कौन है जो कहते हैं मेरी खुशी का पारा कभी कम होता ही नहीं? आज भी बाबा ने कहा ना, तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ा रहे, तुम नशे में रहने चाहिए। हाँ, तो जिसका खुशी का पारा खूब चढ़ा रहता है, कभी भी ना उदासी ना परेशानी ना मन कभी मायूस, सदा खुश, तो वो जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, वाह वाह वाह, देखो भाई सच्चाई से बोलना, नहीं तो एक और पाप चढ़ जाएगा झूठ बोलने का। खड़े हो जाओ अपने स्थान पे। लो भाई देखो खुश नसीब जो सदा खुशी में झूमते रहते हैं। वाह वाह, तालियां बजाओ भाई, इनके लिए बहुत बड़ी बात है, कांग्रेचुलेशन। बैठ जाओ। तो देखो फिर भी थोड़े है ना, बड़ा आसान काम थोड़ी है। माया पेपर लेने हर वक्त खड़ी हुई है, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं अपमान होगा, कहीं कुछ और होगा। हाँ, तो फिर वहां पर मायूसी ना आ जाए कभी पर। बहुत बड़ी बात है सदा खुश रहना। बाबा तो कहते जान चली जाए खुशी ना जाए, ये एक बड़ी बात है ना, खुशी खुशी है। हमारे ब्रिजमन भाई साहब का आपने सुना होगा, उन्होंने लास्ट में भी, मतलब आप देखो आखिरी दिन भी बाबा के महावाक्य सुनकर 12 बजे के बाद 9 अक्टूबर को व्यक्त मुरली थी, तो आशा दीदी ने उनको महावाक्य सुनाए और लास्ट डे भी उन्होंने, देखो जिस आत्मा की जो इच्छा हो ना अंत में वही ड्रामा बन जाता है। उनकी इच्छा थी ना मैं मुरली मिस करूं, ना अमृत वेला, ना नुमा शाम। उन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया। नहीं तो कहीं पेशेंट चाहे बड़े बड़े महारथी भी हो, कोमा में चले जाते हैं ना 15-20 दिन बेड पे, वो इस तरह कोमा में नहीं गए। और उनकी मुरली भी मिस नहीं, उनका योग भी मिस नहीं अमृत वेले। मैं जब भी हॉस्पिटल मिलने गया, एक बार शाम को गया जब, तो देखता था मोबाइल चल रहा है, योग कर रहे हैं, लेटे लेटे योग कर रहे हैं। एक बार तो हम खुद भी बैठ के किया योग एक। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना, जैसी भावना, जो बाबा कहते हैं ना अंत टाइम में ज्ञान अमृत मुख में हो, बाबा की याद हो और फिर खुशी में, जान चली जाए खुशी ना जाए। बेड पे पड़े हैं अच्छे अच्छे सिंगर जो आए मिलने, मोयल जी आए, कोई और आए, और वो बड़े फर्स्ट क्लास, उनके वहां वीडियो वायरल हो गया, वो अच्छी तरह गीत बोल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको बड़ा मजा आता था, वो साथ साथ हाथ हिला के खूब खुश होते थे। देखो ये है ना, इसको कहते हैं कि भाई बाबा कहते थे बच्चे, बाबा को खांसी बहुत आती, मुरली सुनाते थे कफट खांसी कर, फिर बाबा कहते देखो बच्चे ये खांसी जो है ना ये बाबा की सखी है। हाँ, इस तरीके, मतलब बाबा ने उससे परेशान नहीं हुआ, ये सखी है इसलिए उससे परेशान नहीं, चलो हिसाब किताब चुक तुक कर रही है। मम्मा को देखो कैंसर हो गया, कितना बड़ा परीक्षा भाई बाबा, हम तो सुन के हैरान होते हैं। मम्मा रमेश भाई साहब के घर में रही और घर में रह के मतलब 1.5 साल, आप सोचो कैंसर हॉस्पिटल में जाना, हर दूसरे तीसरे दिन जाना, दो दिन अनिला बहन लेके जाती थी, रमेश भाई की बहन डॉक्टर थी, और वहां चेक कराती, आधा दिन तो वो करना और फिर अगले दिन सेवा कहीं ना कहीं, एक दिन वहां जाना, ऐसे करते तो भी वो उस वक्त तो इतनी एडवांस वो नहीं थी ना मेडिकल की, तो आफ्टर ऑल 1.5 वर्ष के बाद डॉक्टर जवाब दे दिया, फिर तो मधुबन ले आए, तो फिर बिल्कुल उसमें गई। लेकिन मतलब आप देखो, अब इसको कर्मों का हिसाब नहीं करेंगे, बाबा ने दीदी मनमोहिनी को जब छुट्टी दी थी ना, तो दीदी मनमोहिनी को छुट्टी देते हुए बाबा बम्बे जा रही है ट्रीटमेंट कराने, तो बाबा ने दृष्टि दे के कहा बच्ची ये भोगना नहीं है, ये योजना है। उस वक्त तो कोई समझ नहीं पाया, जब शरीर छूटा और फिर आके बाबा को मिले, बाबा को समाचार भोग लगाया, तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा ने तो पहले ही बता दिया था छुट्टी देते हुए कि भोगना नहीं है ये योजना है, मतलब एडवांस पार्टी में ले जाने की योजना थी कि उनको विशेष पार्ट प्ले करना है। हाँ, कईयों का संकल्प चला था डॉक्टर ऐसा ना करता वो कर देता, ऐसा ना करता वो करता। हाँ, उसका नाम भगवती था, तो बाबा ने जवाब दिया व्यक्त बाप दादा ने, ना भगवती का कसूर है ना भगवान का कसूर है, ये योजना। तो सब बहुत हैरान हुए कि सचमुच बाबा ने कहा तो था, हम समझ नहीं पाए थे, है ना। तो इसलिए इन आत्माओं का तो सेवा के निमित्त ही होता है सब कुछ। तो मैं मतलब वो अगर जाते भी हैं, उनके बीमारी भी हम सब दादियों को देखा है, हॉस्पिटल की सेवा, सबकी सेवा, इतनी सेवा हो जाती है, बहुत ही अधिक। तो आप सोचो, तो ये लगता है ऐसे वो सफर नहीं करते कभी भी, दुख दुखी नहीं होते कभी। चाहे हम निर्वैर भाई जी को कितना करीब से देखा, कभी भी एक बार वो दुखी हुए हो ना, ना, ना। एंजॉय किया है, हमेशा एंजॉय किया। दादी जानकी को तो उनकी सेंचुरी थी ना, जब ज्ञान सरोवर में मना रहे थे सब फॉरेनर, तो जयंती बहन कह रही थी 100 वर्ष होने पे, कहती दिस इज दादी 7th life। 6 बार डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, इतनी क्रिटिकल हो गई थी शरीर से बिल्कुल, उन्होंने कहा था नो मोर, अब नहीं लगता। और ब्राह्मण परिवार ने भी सोच लिया था कि नहीं बचेगी, अब तो बिल्कुल गई। फिर निकल के आ जाती थी, क्या समझते हो चली गई हूं, अभी मुझे विश्व में झंडा पूरा लहराना है। आप देखो कितना इनके कमाल है ना, ये बाबा की। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे तुम भी इसी तरीके तुम खुशी में रहो, तो ये कितनी बड़ी बात है। सदा खुश नसीबी ये हमारी रहेगी, तो सदा खुश रहना उसके लिए क्या करें, हमें मन में कौन सी ऐसी बात ध्यान में रखें जिससे हम सदा खुश रहें। तो मैंने कुछ बात तो आपको बताई, लेकिन फिर भी खुशी में रहने का सबसे बेस्ट तरीका है संपूर्ण पवित्रता। पवित्र आत्मा का ही खुशी की तरह फाउंटेन ऐसा निकलता रहेगा, ऐसा निकलता रहेगा। मैं दादी चंद्रमणि के कनेक्शन में आया, आप में से किस किस ने देखा है दादी चंद्रमणि को? अच्छा थोड़ों ने देखा है। बेंगलोर में उनका लास्ट हुआ था, लास्ट हमारे से पानीपत से होके गई थी। मैं आपको बताऊं, वो जब हंसती थी, मतलब कोई वो नकली हंसी नहीं, ओरिजिनल, और ऐसे जैसे कोई फाउंटेन उसके अंदर से निकल रहा हो अलौकिक खुशी का, और इतनी खुश, इतनी खुशी में झूम उठती थी वो। तो मैंने एक बार उनको स्वरूप में देखा, मतलब पर वो इतनी प्योर सोल थी, पवित्रता मर्यादाओं की इतनी पक्की। उनको मर्यादाओं की क्लास टीचर बहनों का दादियां उन्हीं को देते थे कराने के, बहुत स्ट्रिक्ट नियम की भी हर चीज की, बहुत मर्यादाओं की भी, लेकिन वो पवित्रता के कारण इतनी खुशनुमा, खुशी में झूमती थी तो खुशी का फाउंटेन जैसे निकलता था। तो प्यूरिटी अगर हमारे अंदर खुशी में झूमते रहेंगे हर वक्त, अगर कुछ मिक्स मामला है ना, तो फिर समझो कुछ ना कुछ फिर जो है खुशी में कमी आए। जब मैं शुरू में ज्ञान में चला, 20 साल मैंने उनकी बहुत पालना ली, तो यंग थे 20-22 वर्ष के, 25, एकदम तो नहीं हम माया जीत बन जाते, तो दादी को मिलता, दादी फिर भी कहती थी अभी भी कुछ मिक्स है, अभी एकदम पूरा वो नहीं बने जितना होना, हम और प्रयास करते और प्रयास करते। फिर जब मैं 40 क्रॉस किया, फिर मेरे को कहा अब सेवा करते करते और सच्चा योगी जीवन योग कर, अब ऐसी स्टेज आ गई, अब बाबा आपको खूब ब्लेसिंग दे रहा है, अब ठीक स्टेबल स्टेज चल रही है। तो सचमुच उसके बाद स्टेबल ही रही। मतलब ये है कि ये खुशी जो है ना, ये इसका बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है इस चीज। दूसरा, सदा खुशी में झूमते रहने का बेस्ट तरीका है जो आपको बताया, कि अगर हम ज्ञान रत्नों से हर वक्त खेलते रहें। दीदी मनमोहिनी कहती थी आओ जरा बैडमिंटन खेलें। बैडमिंटन माना, दीदी को बड़ा शौक था, ये क्वेश्चन आंसर दीदी ने ही बनाने सिखाए, कुछ वो क्वेश्चन पूछती थी मुरली के, कुछ उधर से पूछते, कुछ वो पॉइंट सुनाती, कोई दूसरा सुनाता, इसको दीदी कहती थी बैडमिंटन खेलें, आओ चलो बैडमिंटन खेलें। तो देखो ये एक खुशी प्राप्त करने का तरीका है ना, इसलिए हम बाबा की मुरली की पॉइंट्स दिन में मिनिमम, वैसे तो हर घंटे एक बार जरूर रिवाइज करें, उससे आपका योग भी बहुत लगा रहेगा, और दूसरा नहीं तो मिनिमम 4 बार जरूर ध्यान में रखें, करें आप, बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा आपकी स्थिति अच्छी बनेगी, तो उससे आप खुश नसीब बनते जाएंगे। ब्राह्मण जीवन इतना खुश नसीब, सारा दिन बाबा के ज्ञान रत्नों के संग ही व्यतीत हो, यही सुनने सुनाने की भावना हो। हमें तो कोशिश करते हैं जब भी किसी का फोन आए, क्योंकि बाबा लौकिक के लिए भी कुछ बताता है और अलौकिक के लिए भी बताता है, बाबा के ब्राह्मण बच्चों के लिए भी उन्ती की बातें बताता है, तो आम पब्लिक के लिए भी क्या पॉइंट है वो भी आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा कहीं भी किसी तरह हो। मैं सुबह सोलार की तरफ जाता हूं, वहां कुछ रिकॉर्डिंग भी ये करना होता है मुरली मंथन का, और नाश्ता वहीं करता हूं। पर नाश्ते की टेबल पे बैठ के हम हमेशा जो ग्रुप बैठता है, आज भी हमने हमेशा शेयर करते हैं कि आज बाबा ने विशेष क्या बात कही, आज क्या कही, तो उससे अच्छा रहता है, क्योंकि इससे ना आपको बहुत नशा रहेगा। दिन में 4-5 समय तो बना ही लें, ये करते हुए मैंने जरूर मुरली की पॉइंट सारी चिंतन करनी, फिर आप सचमुच खुश नसीब बन जाएंगे। इस तरीके फिर खुश नसीब के लिए हमें अगर सदा खुशी में झूमना है तो सबसे बड़ा भाग्य, कुछ दिन पहले आया था ना मुरली में, सेवा का चांस मिलना बड़े से बड़ा भाग्य है। सेवा का चांस मिले इससे बड़ा क्या भाग्य हो, है ना। सेवा और चांस, फिर बाबा कहीं कहते हैं क्या करें, चांस से नहीं मिलता। हा? बाबा कहते चांस लेने वाले चांसलर, ये नहीं कि चांस नहीं मिला तो नहीं। महादानी वो जो ढूंढ के भी दान करे, दान तो करना ही है, दान किए बिना हमें जैसे भोजन भी अच्छा ना लगे, आज सारा दिन दान ही नहीं किया। बाबा ने कहा था मनहूस हो क्या, दान ही नहीं करते। इसलिए हमें दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है, और सेवा का इतना वो हो तब हमें उससे खुशी बहुत रही। पुण्य कर्म, क्या धंधा किया सारा दिन में, तो हमारा धंधा ही है, हमारा प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ही है, पतितों को पावन बनाना, ये है ना। और ज्ञान रत्नों से सबको उमंग उत्साह, बाबा कहते सबसे बड़े से बड़ी सेवा खुद उमंग उत्साह में रहना और औरों को उमंग उत्साह में लाना, इससे बड़ी क्या सेवा। तो इसलिए हमें इस तरह सदा उमंग उत्साह में रह के औरों को भी उत्साह से भरपूर रखना है, ये अंदर लक्ष्य रखना है, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। ऐसी सेवा में क्या मैं सदा तत्पर रहता हूं। ब्राह्मण जीवन में कम से कम कोशिश करनी चाहिए 2-3 घंटा बाबा की सेवा में जरूर लगाएं। समर्पित तो 8 घंटा भी लगाते हैं, 10 घंटा भी लगाते हैं, 12 घंटा, उनका तो जीवन ही उसके लिए। लेकिन हम घर में रहते हुए भी समर्पित की तरह हैं, हमारा भी लक्ष्य होगा तो हम जरूर टाइम निकाल पाएंगे, हम सेवा में समय जरूर दें। बाबा कहते बंधन बंधन को काटता है, जितना तुम सेवा के बंधन में बांधेंगे अपने आप को, दूसरे बंधन स्वतः ही कटते जाएंगे। इसलिए इससे श्रेष्ठ क्या बंधन हो। कहीं तो इसी लक्ष्य से आते, हम योग भी खूब करेंगे, क्लास भी मिस नहीं करेंगे, पर सुबह देखो नहा धो के आते हैं, अमृत वेला भी पहुंच जाएंगे, फिर उसके पश्चात देखो तो सब्जी काटने में पहुंचे हुए हैं अंदर, क्योंकि प्लानिंग करके आए हुए हैं कि हमने सेवा का भी भाग्य बनाना है, यज्ञ सेवा, घंटा दो जितना मिले हम सेवा जरूर करेंगे, तो भाग्य बनता है ना उससे। इसलिए हर कार्य हर सब्जेक्ट में भरपूर हो, तो ये है शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। सेवा में कई हैं गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत सेवा कर रहे हैं, आप में से भी कुछ होंगे जिसका रोज 8 घंटा सेवा में जाता ही है, हैं घर गृहस्थ में रहने वाले परंतु 8 घंटा सेवा में जाता है, वो जरा हाथ खड़ा करो, है कोई? 1, 2, अच्छा 1, एक एक पांडव है, वेरी गुड, ताली बजाओ भाई इनके लिए। देखो मैं अभी पिछले सप्ताह ही हरदोई में गया था कानपुर के पास, वहां भट्टी थी, तो वहां एक माता का परिचय सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, ताजुब लगा और बहुत खुशी हुई। उसका नाम था शांति माता, वो जो है उसने बताया कि 3 घंटा में लौकिक घर जाती हूँ और सारा कार्य व्यवहार सब कराती हूँ और बाकी सारे 21 घंटे में सेवा में देती हूँ, अब से नहीं 17 साल से। तो मैंने कहा पति और बच्चे बुरा नहीं मानते, पागल हो गई है, ब्रह्मा कुमारियों ने पागल कर दिया हमारी माँ को। कहते ना 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 ना, वो तो इतना खुश होते हैं और पूरा सेवा, मम्मी तू चिंता ना कर, तेरी सेवा की इच्छा ना तो खूब सेवा, घर की चिंता घर हम सब मैनेज कर लेंगे। सचमुच उसके पति बच्चे ज्ञान में चलते हैं, उन सबको भी मिलाया और बहन की वहां राइट हैंड बनी हुई है। मैं कह वाह, कमाल है। देखो घर गृहस्थ के बंधनों में थी, बंधी रहती तो उम्र भर बंधी, पर शौक था खूब, घर में रहते भी निकालती थी पहले आठ। फिर उसने ये पति को उनको सहमत किया, आपका कोई कार्य रुकने नहीं दूंगी, लेकिन आप मेरे को भाग्य बना। वो उसको टीचर की तरह ही वो अच्छी तरह खूब सेवा कर रही है। तो देखो घर गृहस्थ वाले भी कहीं कहीं अच्छा पूरा टाइम गृहस्थ में रह के भी खूब सेवा करते। बाबा ने तो चार पांच दिन पहले कहा था ना, बच्चे कई माताएं उनकी सर्विस की बहुत दिल होती है, बाबा हम सर्विस करें, परंतु क्या करें चार पांच बच्चे। अरे वाह पैसा तेरे पास है तो माई रख के तुम क्यों नहीं सेवा करो, अच्छी बात है हाँ। तो देखो कितनी बाबा ने भी कितना बल भरा। सचमुच कईयों के पास कई माताएं ऐसी हैं, उनको पैसे की दिक्कत नहीं, घर में माई रख के स्वर्ण रख के और सब उनपे भी कंट्रोल पूरा, लेकिन वो टाइम सेवा में देती हैं। माउंट आबू भी आती हैं, सब तरफ आती हैं, जहां सेवा में जरूर तो भाग भाग के यज्ञ कार्य भी करती हैं। तो अच्छा है ना, इससे बड़ा क्या भाग्य है, संगम युग ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। अगर हमारा हर पल जमा ना हुआ तो हमने क्या किया, इसलिए जमा का खाता खूब करना है। फिर हमें कैसे रहेगी सदा खुशी, जो जो बाबा से प्राप्तियां हुई है ना उनको अगर याद करेंगे तो खुशी बहुत चढ़ेगी। कितनी बड़ी प्राप्ति, उन प्राप्तियों का चिंतन करें, प्राप्तियों का अंदर में अच्छी तरह दिल को लगाएं उनको। बाबा से क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, बहुत प्राप्तियां हुई हैं, उनकी लिस्ट निकालेंगे तो ढेर निकलेगी। लेकिन उन प्राप्तियों को बाबा कहते हैं मैंने खजाने तो बहुत दिए हैं, लेकिन खजाने बच्चों के लॉकर के अंदर ही रहते हैं, उनको यूज नहीं करते हैं, इसलिए वो स्मृति में नहीं आते, उनको प्रयोग नहीं करते, इसलिए वो खुशी नहीं चढ़ती। खुशी तब चढ़ेगी जब उन खजानों को यूज करेंगे, उनको स्मृति में लाएंगे कि बाबा से क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। वो प्राप्तियां सदा स्मरण करते रहो तो खुशी बहुत चढ़ेगी। फिर एक खुशी में सदा रहने के लिए, खुश नसीब बनने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, सबकी विशेषताएं देखें, सबकी कुछ ना कुछ उनके गुण देखें। कमी देखी तो समझो तपस्या भंग हुई, तो हम कोशिश करें सबकी अच्छाई देखनी है, सबके गुण देखने हैं। गुण देखते देखते आप क्या बन जाएंगे, खुद गुणमूर्त बन जाएंगे। इफ यू विल सी द स्पेशलिटी यू विल बिकम ए स्पेशल सोल। विशेषता देखते देखते आप विशेष आत्मा बन जाएंगे, इसलिए हमें कोशिश करें। ये एक बहुत बड़ा व्रत है, इसमें कोई पास हो जाए चाहे कितना बड़ा भी कोई महारथी हो या कितना छोटा भी हो, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, क्योंकि महारथियों की ड्यूटी दूसरी है, उनको जजमेंट करनी होती है कहाँ ठीक कहाँ गलत, फिर उनको समझाना भी पड़ता है ना। तो लेकिन बाबा ने उसका तरीका बताया, चित्त पे कभी ना रखो, यही बहुत बड़ी बात है, कभी चित्त पे ना रखें, फिर भी उसके लिए उतनी श्रेष्ठ भावना शुभ भावना हो। पहले तो कोशिश करें सबकी हम अच्छाई देख के अच्छाई वर्णन करें, हमें कोई ड्यूटी थोड़ी मिली हुई है, जिन बड़ों को मिली है ठीक है, मेरा ये लक्ष्य रहे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे सदा अच्छाई देखेंगे, अच्छाई चिंतन करेंगे, अच्छाई वर्णन करेंगे। उसके लिए एक तरीका बताता हूं, बताऊं वो तरीका ये है, आपके जो भी नियर डियर है ना 8-10, उनको दिन में एक बार विशेषता देख के उनको कहो, क्या आप बहुत अच्छे हैं, क्या कहेंगे? जो इतना ऐसा बोल रहे हैं ना इसका मतलब नहीं, कहेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। उमंग होना चाहिए ना, क्या कहेंगे? अच्छा मैं आपको बताऊं, ये आज जो क्लास में आप सारे भाई बहन बैठे हैं ना, आप बहुत अच्छे हैं। तो दिन में एक बार उनको जरूर कहें, अभी भी आप अगर एक दो दिन हैं, जो भी मिले आपको उनको आप उन पांच छह को तो कहना, और जो भी मिले कह सुनो मैंने आपको एक बात बतानी थी, आप ना बहुत अच्छे। अच्छा एक काम करना, दोपहर को भोजन करने से पहले ना घर में फोन करना, जो भी नियर डियर हो, पति है बेटा है कोई भी नियर डियर बेटी है, क्या सुनो मुझे आपको ना एक बात बतानी है, क्या कि आप बहुत अच्छे हैं, आप इसका रिस्पांस देखना। दूसरी तरफ से रिस्पांस मिलेगा, मम्मी तुम मेरे से भी अच्छी हो। हो सकता है किसी का पति कहे, अच्छा तेरे को आज ही पता लगा है मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन इट विल बी ए वेरी गुड डेली। ये कोशिश करें, एक बार जरूर कहना। कहेंगे जो कहेंगे, दोनों हाथ खड़े करो। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। लोग खास ध्यान रखना, क्या हाँ क्या कहेंगे घर में जाके अपने धर्म पत्नी को, क्या कहेंगे? दिल से कहना है, ऐसे नहीं सुन तो बहुत अच्छी है फटाफट चाय बना के ला। दिल से, बहनों को भी दिल से। तो उससे क्या होगा, हमारा देखना अच्छा अच्छा कहते दूसरों को, हम अच्छे बन ही जाएंगे। कोशिश करो, दिन में अगर आप 21 बार कम से कम ये प्रयोग करके देखेंगे, आपका जीवन स्वर्ग बन जाए। कोई भी मिले, कोई किस तरीके, कोई, मैं तो ये प्रयास करता हूं। एक भाई सेवा में है, वो गाड़ी चलाता है, आज सोलार से ला रहा था। मैं कहा, सुनो रमेश भाई, मैं आपको एक बात बताऊं। कि क्या? मैं, आप बहुत अच्छे। इतना खुश हो गया। और है भी वो बहुत अच्छा। तो मतलब कितना उत्साह बढ़ता है, छोटों का भी उत्साह बढ़ता है। बड़ों को कहो, अपनी दीदी को जब भी क्लास में जाओ जरूर, दीदी सुनो मैंने एक बात बतानी थी, आप बहुत अच्छे। और वापस आओ तब भी कह के आओ, आपको देखना इतनी दुआएं मिलेंगी जो बात ना पूछो। जो कहते हैं ना बाबा, दुआएं दो दुआएं लो, बड़ा सहज पुरुषार्थ है। कैसे दें दुआएं? ये तरीका है दुआएं देने, दुआएं लेने का। किसी की विशेषता देख के, उस आत्मा को चमकता हुआ बिंदु देख के, और ये कहना आप बहुत अच्छे हो, समझो दुआ देना है। और उससे ऑटोमेटिकली दुआ देने का ध्यान रखो, मिलेगी तो अपना आप ही। जितना खूब देंगे ऑटोमेटिकली, हाँ 100 times होके आपके पास वापस आएंगे। तो ये पूरा प्रयास करो, उससे बहुत अच्छी आपको दुआएं भी मिलेंगी, शक्ति भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी। फिर एक और तरीका है सदा खुश नसीब बनने का और खुशियों में झूमने का, 4 लड्डू रोज बार बार खाओ। वो कौन से 4 लड्डू हैं? एक है पहला, वाह बाबा वाह, वाह वाह के लड्डू हैं चारों। वाह बाबा वाह, जितना कह सके वाह बाबा, छोटी छोटी बात पे वाह बाबा, कमाल है तेरी, कितना तू मुझे प्यार से ले आया, प्यार से ले जा रहा है, वाह बाबा वाह। भोजन करो, वाह बाबा वाह, तेरा ब्रह्मा भोज, वाह बाबा। बाबा के दिल से गुणगान गाना, ये है वाह बाबा। इसको जितना निकले दिल में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे बहुत शक्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो ये एक बाबा के दिल से गुणगान गाना ही एक बहुत ऊंची स्थिति बन जाती है। रियलाइज करें, योग में क्या करना होता है, यही तो करते हैं हम, अमृत वेला योग करते हैं, सब करते हैं ना सभी आप। तो योग में दिल से बाबा के गुणगान, एक बार अपने को चेक करके देखो, क्या मैं 1 घंटा बाबा के गुणगान कर सकती हूँ, कर सकता हूँ? आप देखना, बहुत कम स्टॉक है। क्या करते हैं, बैठते हैं, बाबा तू प्रेम का सागर है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, तू शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप हूँ, तू आनंद का सागर है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, तू सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूँ, तू शांति का सागर है, मैं खत्म हो गया। वो तो 2 मिनट लगा बस, अब क्या करेंगे आगे? हाँ, एक एक गुण को रियलाइज करना, बाबा के गुणों को दिल से लगा लेना, कितना बड़ा गुण बाबा, सारी विश्व की आत्माएं 800 करोड़ आत्माओं की सदगति कर रहे हैं, ऐसा कोई हो सकता है क्या? उन सब का कल्याण, कहते मैं सर्व का सदगति दाता हूं। सचमुच बाबा आप तो कितने प्रेम के सागर हैं, मुझे मीठे बच्चे मीठे, आज भी कहा ना, तुम हो मेरे मीठे लाडले बच्चे, मुरली में हाँ, तुम मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, बाबा आपने कह कह के हमें मिठाई बना दिया है ना। तो ये दिल से बाबा के गुणगान गाना, दिलों को रियलाइज कराना, कितनी बार बाबा की मदद मिली याद करो, हरेक को मिली होगी, परिस्थितियों में मिली होगी, कितनी बड़ी बड़ी मदद बाबा देता है, उस मदद को भी याद करना, उस वक्त कितना बाबा का प्यार, कि बाबा ने आके कैसे बच्चों को, एक बार हम पुंछ में थे, जम्मू से पुंछ, पुंछ बरसाती सीजन था, पुंछ की बहन ने कहा ना तो यहाँ ट्रेन आती ना यहाँ प्लेन आता और यहाँ कोई नहीं आता, मैं कहा मैं जरूर आऊंगा, बस का ही एक साधन था, बस से गए हम वहां, दो तीन दिन खूब सेवा की, टीवी में भी उसमें भी उन्होंने हमारे शो कराए और सब प्रोग्राम हुए। वापस जब आए तो बारिश सीजन था, इतना बारिश तेज, तो एक जगह ऐसा था पहाड़ों में है ना वो रास्ता, तो पहाड़ से इतना तेज झरना पानी का, बहुत बड़ा फ्लो, और आपको पता हो पुंछ की छतों से पाकिस्तान नजर आता है, दैट इज द लास्ट स्टेशन, उसके बाद सब नजर, तो वो पानी का झरना आगे पाकिस्तान चला जाता, तो वहां पे कोई भी, सारी बसें सब गाड़ियां लाइन में खड़ी हूं, कोई हिम्मत ना कर रहा हो क्रॉस करने की, इतना तेज फ्लो था कि गाड़ी भी बह के चली जाए। तो पता नहीं क्या हुआ हमारे बस वाले को, उसने ऐसे सारी बस गाड़ियों को क्रॉस करके और उसने डाल दिया उसमें, उसमें डाला तो बस तो बिल्कुल डावाडोल होने लग गई, तो सब कांपने लग गए, रोने लग गए, ज्यादातर वहां मुस्लिम एरिया, या अल्लाह या खुदा या अल्लाह या, तो क्योंकि पिछली बार भी एक बस ऐसे गई थी तो ना बस मिली वो क्योंकि चली गई पाकिस्तान, ना बॉडीज मिली, सब गया, तो वो जोर से चिल्लाने लग गए सब, खे हमें डरने लगा, हमें एकदम बाबा सामने आ गए, बाबा ने कहा बच्चे ऐसे निकल जाएगी जैसे माखन से बाल, ऐसे बाबा ने कहा, और पता नहीं उसका स्टेयरिंग घूमा और वो एकदम निकल गई बाहर। तो जब बाहर निकली, बाहर जाके उसने जब खड़ी की तो वो उतरा, सारी सवारियां उतरी, सब उसके पीछे पड़ गए, तुमने मरना था, तुम खुद छलांग लगाते, हम सबको क्यों मारने चला था, तो बहुत कुछ, खैर उसने सॉरी किया जो भी था। तो हम ये देखा है, अब आप सोचो ऐसे ऐसे सीन जब बाबा स्वयं आ जाते हैं, क्यों बाबा कहते हैं, दिल से कहो क्या मेरा बाबा, तो बाबा बंधा हुआ है, बाबा खुद आ उतरेगा, तो देखो दिल से याद करना है, फिर आप देखो बाबा की मदद कितनी मिलती है, कमाल हो गई बाबा ने। तो ऐसी ऐसी, ये तो एक अनुभव, पता नहीं ऐसे आप सबके भी होंगे, मेरे भी हैं, कम से कम बीसियों अनुभव ऐसे हैं जिस वक्त बाबा, तो ये कोई छोटी बात है, कौन हमारे साथ है, हजार भुजाधारी भगवान साथ है, तो चिंता की क्या बात है, इसलिए फिर चिंता करने की कोई बात ही नहीं, उस मस्ती में रहें, कौन साथ है, तो इसलिए वाह बाबा वाह, फिर दूसरा वाह वाह रे मैं, हाँ मेरा भी कितना बड़ा भाग्य, मैं भाग्यवान आत्मा हूं, और फिर वाह ड्रामा वाह, ड्रामा की भी वाह वाह करो, ड्रामा के हर सीन में वाह, है ना, समझो आप आ गए तो भी बहुत वाह वाह, मान लो किसी को एक ऐसा बंधन पड़ा आते आते रह गया, तो उसको ये नहीं कि हाय मेरा ही ऐसा ड्रामा बना हुआ था, हाय मेरे सामने ही परीक्षा आनी थी, हाय नहीं 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 आ पाए, कोई कारण है, उसमें भी बाबा ने कुछ आपसे बड़ी कार्य कराना होगा, बड़ी सेवा करानी हो, हाय तो कभी करनी ही नहीं, हाय तो कभी करनी ही नहीं, सदा वाह बाबा वाह ड्रामा वाह रे मैं। कोई भी कितनी बड़ी बीमारी हो, बीमारी में क्या करते हैं, आए हाय कर लिया तो फेल हो गए। एक बार ORC से जा रहे थे, सेवा थी, उसने एकदम ब्रेक मारी, मारुति वैन थी वो, पलट गई तो उसमें हमारी ये उंगली कट गई, लेफ्ट हैंड की छोटी, तो पता भी नहीं लगा, ताजा ताजा नहीं पता, तो जैसे पलटी पड़ी हो, हम गिरे थे, GT रोड था, तो सारे इकट्ठे हो गए ढेर, मैं कहा हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप जाइए जाइए, बिल्कुल ठीक है, खड़े हो गए हम, फिर खैर हॉस्पिटल गए, वो कहने लगा मेरे पास एनेस्थीसिया तो है नहीं, उसने टांके लगाए, अब टांके बिना लोकल दिए, बिना एनेस्थीसिया के लगाओ, इतनी चिंगाड़े, अब दर्द होना था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं लगाइए, अब दर्द हो भी रहा था, फिर भी मैं कर रहा था वाह 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 वाह। मैं क्यों, मैं पक्का था हाय नहीं करनी मैंने कुछ भी हो जाए, वाह 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 दर्द हो फिर आत्मा बन के उड़ जाऊं, वाह 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 तेरी गोदी कितनी अच्छी है, ये तो तेरे शरीर को टांके लग रहे हैं मेरे शरीर को थोड़ी लग रहे हैं, वाह वाह वाह। ऐसे अगर हम करते हैं तो उससे स्थिति हमारी बहुत अच्छी रहती है शरीर से डिट। तो हमेशा वाह बाबा वाह करना, वाह ड्रामा वाह करना, वाह रे मैं, और वाह वाह रे पाठधारी, ये सबसे डिफिकल्ट जो है ना, जो साथ रहते हैं लौकिक या अलौकिक या देवी परिवार ब्राह्मण सभी में, सबके लिए वाह वाह निकलनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा ही पार्ट ऐसा क्यों रखा है, किसी का पति ज्ञान में नहीं है वो हर वक्त विघ्न डालता है, किसी की पत्नी ज्ञान में नहीं, तो नहीं तो भी वाह वाह करे, बाबा ने मेरी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए रखा है, क्योंकि सहनशील बनेगा वही शहनशाह बनेगा, सहनशील ही शहनशाह बनेगा, तो इसलिए बाबा ने मेरे को, थैंक्स बाबा आपने एक ऐसी आत्मा मेरे साथ रखी जो मेरी सहन शक्ति बढ़ाती रहे, तो मेरे को कभी भी फील ना हो, फील हुआ तो फिर फेल, हमें फील कभी ना हो। एक गांव की माताओं की भट्टी में पूछा, कोई सहनशीलता जिसका नंबर वन चार्ट रहा हो, वो गीता पाठशाला गांव की माता कहती है कि मैं सास मेरी ज्ञान में नहीं चलती, कहती तू क्यों जाती है ओम शांति क्यों जाती, हर तीसरे दिन मेरी जूतियों से पिटाई करती है, लेकिन मैं परवाह नहीं करती, मैं सोचती हूँ वाह मेरे और पाप, तीन जन्म के पाप कट गए, एक जन्म के पाप कट गए, सारे पाप कट गए, एक साल उसे पीटती रही फिर वो खुद ज्ञान में चल पड़ी, फिर माफी मांगी, ओहो मैं तो इतना पाप किया ये किया, एक साल तक देखो पिटाई खाती रही लेकिन फील नहीं किया, कितनी बड़ी बात है ये, एक बहुत बड़ी बात, कहना आसान है प्रैक्टिकल में पता लगता है, छोटी छोटी बातों की इतनी फीलिंग हो जाती है, बड़ा तो बात क्या, इसलिए सदा उससे प्रूफ रहना। अच्छा ओम शांति, अभी 12 से 12:30 योग भी है ना, ओम शांति।
तुम्हें।